आपके हृदय में ऋषि मुनियों का जो संस्कार है, आपके खून में जो सत्संग की प्रीति है, जो सद्भावना है, उनका हम अभिवादन करते हैं। आप हम मिलकर एक गीता का श्लोक फिर से उच्चारण करेंगे। योगस्त कुरु कर्माणि, योगस्त कुरु कर्माणि, संगम त्यक्त्वा धनंजय,
संगम त्यक्त्वा धनंजय,
सिद्धया सिद्धयो समो भूत्वा,
सिद्धया सिद्धयो समो भूत्वा,
समत्वं योग उच्यते,
समत्वं योग उच्यते।
ये श्लोक चलते फिरते उठते बैठते युद्ध करते हुए भी भगवान की बंदगी करवाने में सक्षम है। ऑफिस में काम करते हुए भी आप बंदगी का फल पा सकते हैं हजूर। कर्फ्यू ऑर्डर पर सिग्नेचर करते हुए भी बंदगी का फल पा सकते हैं। शासन करते समय भी और राहन दुकान चलाते समय भी, रोटी बनाते समय भी और दाल बघारते समय भी आप समाधि का सुख ले सकते हैं, बंदगी का तप का फल पा सकते हैं। ये ऐसा श्लोक है। भगवान कहते हैं योगस्थ कुरु कर्माणि, हे धनंजय तू आसक्ति का त्याग करके सिद्धि असिद्धि में सम होकर योग में स्थित हुआ कर्मों को कर, क्योंकि समत्व ही योग कहा गया है। बहुत ऊंची बात है। योग कई प्रकार के हैं और कुछ योग तो मैंने प्रैक्टिकली किए भी, लय योग, हठ योग, नादानुसंधान योग, कुंडलनी योग में तो मैं पीएचडी हूं, जयराम जी की, कुंडलनी योग में तो मैं पीएचडी हूं। कुंडलनी योग ये होता है कि हमारी सुषुप्त जीवन शक्ति सोई हो, हम प्रयत्न करके उसको जागृत करें तो आसन होने लगे, मुद्राएं होने लगे, अष्ट सात्विक भाव होने लगे। आप कल्पना न करो ऐसे श्लोक उत्पन्न हो जाएं, आप कल्पना न करो ऐसे नृत्य उभर आए। तो 12 साल आप करो कुंडलनी जागे, एक बात। दूसरा, कोई कुंडलनी योग में पीएचडी हुआ हो अर्थात कुंडलनी योग की पूरी साधना बढ़िया किया हो, ऐसे पुरुष संप्रेक्षण शक्ति बरसा है तो अपनी कुंडलनी जागृत हो सकती है। जैसे रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्र पर अपनी वो शक्ति बरसाई थी और नरेंद्र की कुंडलनी शक्ति जागृत हुई, विश्व विख्यात हुई और दुनिया जानती है। ऐसी आपके अंदर 3.5 चक्कर मारकर जीवनी शक्ति सुषुप्त है, उसके 10-5% आश्रय से हमारे काम काज होते हैं। अगर वो अधिक कुछ विकसित होती है तो आदमी का प्रभाव बढ़ जाता है, लेकिन प्रभाव बढ़ाना ही कुंडलनी योग की पराकाष्ठा नहीं, परमात्मा से मिलाने की भी व्यवस्था। ऐसा कुंडलनी योग भी मैंने किया। हठ योग, लय योग, नादा अनुसंधान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, योग के भी कई वैरायटियां हैं। इन सब योग में मूर्धन्य कह दे और सुगम कह दे, थोड़े समय में ऊंचाई को जल्दी छुआ दे ऐसा कह दे, तो ये भगवान कृष्ण का बताया हुआ समत्व योग है। कुंडली योग करने के लिए तो आपको एकांत कमरे में ध्यान करना पड़ेगा, लेकिन ये समत्व योग आप ऑफिस में बैठकर कर सकते हैं, ऑर्डर करने के पहले भी कर सकते हैं, ऑर्डर करते वक्त भी कर सकते हैं, ऑर्डर करने के बाद भी कर सकते हैं। जयराम जी तो बोलना पड़ेगा साहब। ये कुंडलनी योग अच्छा है, रिद्धि सिद्धि देता है। पाश्चात्य जगत के विज्ञानी बड़े प्रभावित होते हैं और मेरे पास आते हैं, कुंडलनी योग की दीक्षा लेते हैं। विदेशों में भी इसकी बड़ी भूख है, जो जानते हैं उन संतों को तो वो लोग गॉड करके पूछते हैं, भगवान करके पूछते हैं। अपना भारत का है ये कुंडलनी योग। फिर भी मेरा अपना अनुभव बताऊं और श्री कृष्ण के वचन के अनुसार कुंडलनी योग से भी कुछ आगे की खबर देता है ये समत्व योग। भगवान कहते हैं योगस्थ कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर तुम कर्म करो। अब योग क्या कि तुम्हारे चित्त में समता आ जाए, पक्षपात रहित अवस्था आ जाए, इसका नाम है योग। धार्मिक कर्म करने से पुत्रेष्टि यज्ञ तुमने किया, लेकिन उस पुत्रेष्टि यज्ञ में थोड़ी गलती हो गई तो पुत्र होने के बजाय कुटुंब का कोई आदमी मर सकता है। थोड़ी गलती हो गई सकाम कर्म में तो पुत्र होने के बजाय कोई पंगु का जन्म हो सकता है, क्योंकि सकाम कर्म है। लेकिन इस कर्म में ऐसा खतरा नहीं, ये योग करने में कोई खतरा नहीं है, समत्व योग में ऐसा कोई खतरा नहीं। यज्ञ किया गया कि देवता इंद्र को मारने वाला बेटा पैदा हो, लेकिन हर्ष की जगह पर दीर्घ मंत्र में आ गया तो इंद्र से मरने वाला बेटा वृत्रासुर पैदा हुआ। सकाम भाव से किए हुए कर्म में थोड़ी गलती हो जाती है, प्रत्यवाय लगता है तो विपरीत असर होता है, लेकिन इस योग में कोई विपरीत असर होने की संभावना ही नहीं। ये योग पूर्ण हो गया तो इसी जन्म में यही ब्रह्मज्ञानी हो जाओगे, अगर अधूरा रह गया तो ब्रह्म लोक की यात्रा करोगे, खूब सुखद लोक है, अथवा तो सतखंड में या स्वर्ग खंड में। साधारण योग हुआ तो स्वर्ग में वेट करोगे, मौज करोगे, बाद में किसी धनवान के घर जन्म लोगे, किसी बुद्धिमान के घर जन्म लोगे। अगर कुछ मीडियम है तो सप्तखंड में, उससे भी ऊंचाई को पहुंचे तो ब्रह्म लोक में हजारों वर्ष रहकर फिर साधक शुचि नाम श्री मताम गे हे योग भ्रष्टो पी जायते अथवा योगी नाम एव कुले भवती धीमताम। ऐसा योग करने वाला अगर योग को पूर्णता को नहीं पाया तो वर्षों तक ऊंचे लोकों में जाता है और फिर किसी बुद्धिमान अथवा पवित्र योगी के कुल में जन्म लेता है। जैसे हम गए तो कई देशों की यात्रा करते, जब लौटे स्विट्जरलैंड में तो जहाज बदलने के लिए हमको 2-4-5 घंटे वेट करना पड़ा, तो हमारा रहना खाना ये वो सारा जहाज कंपनी पर, जयराम जी बोलना पड़ेगा। ऐसे ही जिसको परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ, वो स्वर्ग में आप करोड़ों रुपया खर्च करके यज्ञ कर रहे और वे यज्ञ सफल हुए तो आपको स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग का फल भोगकर आपके पुण्य क्षीण होंगे तब आपको नीचे भेज जाए। लेकिन इस योग को करने वाला तो इस योग के बल से ही स्वर्ग में जाएगा, लेकिन उसका पुण्य खत्म नहीं होगा, उसके लिए तो वेटिंग रूम जैसा काम करेगा स्वर्ग। जैसे एक जहाज हमको 8 बजे देना है, हम नहीं दे पाए और दूसरे दिन 8 बजे दे रहे हैं, तो 24 घंटे का आपका वेटिंग का समय हमने अजाया किया, तो हम सुविधाएं आपको देंगे, सुविधा का चार्ज नहीं होगा, जयराम जी की। तो ये योग करने वाला, ये आखिरी योग है, ऊंचा योग, और ये भगवान के साथ एक करने वाला योग है। दूसरे जो कर्म हैं वो तुम्हारे को भोगों के साथ जोड़ते हैं, कोई पुण्य लोकों के साथ जोड़ते हैं, तो कोई ही स्वर्ग के साथ जोड़ते हैं, तो कोई अप्सराओं के साथ जोड़ते हैं, लेकिन ये भगवान जो योग बताते हैं वो आपको ब्रह्म परमात्मा के साथ जोड़ता है। तो जैसे कोई राष्ट्रपति से मिलना चाहे और राष्ट्रपति उसको मिलने का समय दे दे और बीच के ऑफिसर से गुजरता जाएगा तो बीच के ऑफिसर भी उसके सुख सुविधा का ख्याल रखते हैं। क्या ख्याल है कलेक्टर साहब, राष्ट्रपति ने आपको मिलने का समय दे दिया तो कहीं आपको वेट करना पड़ता है तो मुजरिम की नहीं वेट करोगे कि गेस्ट की नहीं, गेस्ट की नहीं। ऐसे जो इस योग का आश्रय लेता है, इसी जन्म में ब्रह्म ज्ञान हो गया तो हो गया, नहीं तो लोक लोकांतर में उसका पुण्य क्षीण नहीं होगा, अपितु उस भक्त को वर्षों की व दिव्य लोकों की यात्रा करके भोग भोग कर जब इच्छा चाहे फिर वो मनुष्य लोक में आकर इस योग को करता है। जैसे एक ब्रह्मचारी ने साधना की, रामानंद स्वामी से दीक्षा शिक्षा ली, किसी कारण उससे अपराध हो गया और गुरु ने उसको श्राप दे दिया कि तूने मुझे चमारों का भोजन कराया बेवकूफ, मेरी भक्ति में विघ्न डाला, तुझे चमार योनि में जाना पड़ेगा। वो ब्रह्मचारी रघु चमार के यहां जन्म लिया और उसका नाम रहिदास पड़ा। 10 साल की उम्र में उसकी ऐसी अगले जन्म की हुई भक्ति उभरी कि संत तुलसीदास उनका दर्शन करने गए और उसी रहिदास से दीक्षा लेकर मीरा ने मेवाड़ को झुमा दिया। तो लोक लोकांतर में जाने के बाद भी जो भक्ति नष्ट नहीं होती, जो धन खर्च नहीं होता और उस धन के ब्याज को भी आप यूज नहीं कर सकते, इतना वो भारी धन है, जयराम जी की। परदेश में आपके हिंदुस्तान के 10 लाख हो, परदेश में जाकर रहो तो आपके घर का गुजारा नहीं चल सकता, आपकी मूड़ी खत्म हो जाएगी, लेकिन हिंदुस्तान में 10 लाख लेकर कोई ब्याज पे रहे तो सेविंग भी कर सकता है, क्योंकि यहाँ ब्याज बहुत भारी है। फिर भी कुछ खर्च होता है, 10 लाख ब्याज के 15,000 रुपया महीने आ गए मान लो, ऐसा होता है ना, 15,000 तो आ जाते हैं, 10,000, 10 लाख के 15,000 रुपया ब्याज आ गया। तो हो सकता है कि आप 5,000 खर्च करो, बाकी का सेविंग करो, तो कुछ तो खर्च होगा, लेकिन इस योग को करने वाले का परलोक में कोई खर्च ही नहीं होता है। चीफ गेस्ट है ये। तो ये समत्व योग की बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, और बड़ा आसान है, करने में सुगम है, और श्रद्धा और बुद्धिमान व्यक्ति के लिए तो दाएं हाथ का खेल है, और जितना हो गया उतना तो रहता ही है। जैसे पुण्य हो गया, फिर वो पुण्य बढ़ा नहीं तो फिर खर्च होकर डाउन हो जाता है। संपत्ति हो गई, बढ़ी नहीं और कुमार्ग में गई तो डाउन हो जाती, लेकिन ये संपत्ति एक बार जहां तक हो गई फिर घटती नहीं है, बढ़ानी हो तो बढ़ सकती, नहीं तो वहां रुक जाती है, उसमें रिवर्स पना नहीं। ये ऐसा समत्व योग है, जो साधना करके समता पा लेते हैं, जप तप करके समता पा लेते हैं, जहां तक की समता पा लेते हैं उतनी समता से फिर नीचे नहीं आते। जैसे कोई 8वीं कक्षा तक पहुंच गया, फिर परीक्षा दी, 9वीं में गया तो गया, लेकिन फेल हो गया तो 7वीं में तो नहीं जाएगा, 6ठी में तो नहीं जाएगा। ये ऐसा है। इस समत्व योग को करने के लिए तपस्वी लोग तपस्या का आश्रय लेते हैं, लेकिन कृष्ण ने उससे भी सूक्ष्म उत्तम रास्ता बताया। पंच अग्नि तापते हैं, पांच प्रकार के बड़े बड़े वो अग्नि के कुंड जलाएंगे, उसके बीच बैठेंगे। चलो कि अग्नि का ताप है फिर भी हम सह रहे हैं, जाड़ों में सर्दी के हिमालय के बीच बर्फ के टुकड़े रख के फिर सहेंगे। तो ये तो जानबूझकर रखा जाता है और सहन शक्ति बढ़ाई जाती, लेकिन कृष्ण बोलते हैं कि जानबूझकर रखे मुसीबत और फिर सहन शक्ति बढ़ाए, उसकी अपेक्षा जो परिस्थितियां आए उसमें विचलित ना हो और सम रहे, ये उससे भी ज्यादा प्रभावशाली है। और ये परिस्थितियां कलेक्टर ऑफिस में भी आ सकती है, काश्तकार के खेत में भी आती है, माई के रसोई घर में भी आती है, और बच्चों को नन्नों मुन्नों को खिलाने पिलाने धुलाने सलाने में भी आती है। ये परिस्थितियां तो बाजार में भी आएगी, जंगल में भी आएगी, साधु के मठ में भी आएगी और पुजारी के पूजा रूम में भी आएगी, जयराम जी बोलना पड़ेगा। इन परिस्थितियों को लाना नहीं है, इन परिस्थितियों को बनाना नहीं है, इन परिस्थितियों को बिगाड़ना नहीं है, इन परिस्थितियों में सम रहना है। इन परिस्थितियों में सम रहना ये आपके हाथ की बात है। परिस्थितियां सारी बदल देना आपके हाथ की बात नहीं है। अब गर्मी आई, सारी गर्मी बदल दो, आपके हाथ की बात नहीं। लेकिन हाय गर्मी रे, मैं तो मर गयो रे, मैं तो मर गयो, तो आप विषम हो गए। गर्मी की जगह पे ठंडी आए, क्या ठंडी मिली, वाह ऐसी बनी रहे बनी रहे, तो आप विषम हो गए। पुष्पों की माला आप ले आए, मैं बड़ा त्यागी और ये आप फूल माला चढ़ाकर क्या हमारे को संसार में घसीट रहे हैं, ये सब हम इसीलिए तो सत्संग नहीं करते, हमको ये सब नहीं चाहिए, तो हो गई विषमता। आप फूलों की माला लाए ठीक है, और आपकी माला आप सम्मान करते, लो आपका सम्मान, चलो आप और हमारे में एक ही है, इस शरीर को पहराए तो क्या, और उन भाइयों को पहरा कर भी आनंद लिया, हो गई समता। जयराम जी बोलना पड़ेगा।
आप कहते हैं कि देखो हमने इतनी मालाएं लाए, हमने एक भी नहीं पहरी, सबको पहरा दी, हमको जैसे तैसे मारा जाएगा, आ गई विषमता।
जयराम जी बोला करो भाई साहब। बेटे को जन्म लिया दिया, बेटा बड़ा हुआ, अब बहू आए, बेटे के दो हाथ हैं, अब शादी हो जाए, चार हाथ हो जाए, घर का काम संभालने वाली लाडी मिल जाए, मेरे पैर दबाए, मैं पानी का प्याला मांगू, वो दूध ले आए, ऐसी बहू रानी आ जाए, हो गई भी क्षमता। अब पानी का प्याला मांगा, दूध के प्याला के जगह पर और कोई प्याला लाएगी तो रोगे कि हाय रे, मैं दो पैर वाला चोरे को चार, दो हाथ वाले चोरे को चार चार हाथ कराए, लेकिन मुझे क्या पता कि चार हाथ के साथ चार पैर भी हो जाएंगे, पशु जैसे हो जाएंगे रे आए। हो गए, बेटे को जन्म दिया, बेटी को जन्म दिया, पाला पोषा, अपना कर्तव्य निभा लिया, वो सेवा करे तो उनकी मर्जी, नहीं करे तो उनकी मर्जी, मेरा रब है, मैं रब का हूं, हो गई समता। अब बेटा मुझे सुख दे, अब सुख दे तो बेटे में आसक्ति हुई तो हो गई विषमता, और सुख नहीं दिया तो बेटे से हो गई नफरत तो भी हो गई विषमता। अगर आपको वो दुख देता और आप सम रहे तो बेटा तो क्या, बेटे का बाप भी आपका पैर छुएगा देर सवेर, लेकिन बेटा सुख दिया तो बखान करके अगाते नहीं और बेटा दुख दिया तो निंदा करके थकते नहीं है, तो योग नहीं हो गया, भोग हो गया। भोग अच्छी जगह पर पोस्टिंग हो गई कि हाँ मैं यहाँ बना रहा हूँ, यहाँ बना रहा हूँ, कहीं बदली न हो जाए तो भय बन गया, हो गया वियोग। अच्छा अच्छी जगह भी ठीक है और कहीं इधर उधर की जगह भी ठीक है, सब गुजर जाएगा, ऑल इज पासिंग थ्रू, सब पसार हो रहा है। चलो अपना कर्तव्य पालो, चलो बढ़िया जगह है तब भी काम करना है, घटिया जगह है तभी भी काम करना है। जैसे एक जगह से दूसरी जगह जाते तो कहीं बढ़िया सड़क आती है, कहीं गड़बड़ी सड़क आती है, कहीं ढलान आती है, फास्ट आसानी से गाड़ी चलती तो कहीं फर्स्ट गियर या सेकंड गियर में ज़्यादा पेट्रोल देना पड़ता है, धुआं ज़्यादा सहना पड़ता है, फिर भी मुसाफरी तो मुसाफरी है, ऐसे ही संसार है। ऐसा समझकर अपना कर्तव्य करते रहे तो कर्तव्य का आनंद है और समत्व योग होता चला जाएगा। जयराम जी बोलना पड़ेगा। हाँ कोई बढ़िया काम किया और धन्यवाद कम मिला तो हाय रे हाय, यहाँ के लोग बड़े नालायक है, बेटा बड़ा नालायक है, पढ़ाया लिखाया और छोरा चल पड़ा, जुदा हो गया, मेरी माँ मेरा ध्यान नहीं रखती है, वो मेरी भाभी मेरे को लड़ती है, मेरी ननंद ऐसी है, मेरी देरानी जैसी है, मेरी जेठानी ऐसी है। नहीं नहीं, मुस्कुरा के गम का जहर जिनको पीना आ गया, ये हकीकत है कि जहां में उनको जीना आ गया, आ गया। ये है समत्व योग। श्री कृष्ण कहते हैं सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मता। मेरे मत में वो परम योगी है कि सुखद घटना आ जाए चाहे दुखद घटना आ जाए, उनसे प्रभावित नहीं हो, इम्प्रेस ना हो। जितना छोटा आदमी उतना ज्यादा इम्प्रेस होता है, जितना बड़ा आदमी उतना परिस्थितियों से कम इम्प्रेस होगा। आप हम छोटे थे ना तो चवन्नी के चॉकलेट लॉलीपॉप से प्रभावित हो जाते थे, और कोई छीन ले तो रोते भी ऐसे थे, और मिल जाए तो बांचे भी ऐसे पकड़े। लेकिन अभी चवन्नी के तो क्या, ₹4 के चॉकलेट कोई दे दे आपको तो आप ज्यादा इम्प्रेस नहीं होंगे, और वापस ले ले तो आपको कोई बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि आप व्यवहारिक जगत में थोड़े ऊंचे हो गए। ऐसे ही कृष्ण कहते हैं कि इस व्यवहार की कैसी भी परिस्थितियां आए और आपको जितनी कम चोट लगती है उतने आप समत्व योग के रास्ते पर हैं। और मजे की बात है कि परिस्थितियां आ जाए, जो ज्यादा प्रभावित होता है वो परिस्थितियों में ठीक निर्णय नहीं ले सकता, जो ज्यादा इंप्रेस हो जाता है ना वो ठीक निर्णय नहीं ले सकता। एक दृष्टांत, आप ड्राइविंग कर रहे हैं, आप ओवरटेक करके आगे ले जाना चाहते हैं, लेकिन सामने गाड़ी आ रही है, आपने आधी गाड़ी ओवरटेक कर ली, अब आप प्रभावित हो गए, किम कर्तव्य मूड हो गए, तो धड़ाक धूम होगा, लेकिन उस समय आप इम्प्रेस नहीं हुए, सामने आ गई ट्रक, तो आपका डिसीजन सही होगा। रसोई बनाते समय या एक पदार्थ लिक्विड पदार्थ एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डालते, आप सम हैं तो धड़धड़ाहट डाल देंगे, डुलेगा तो डुल जाएगा, मैंने नमक डाला कि नहीं, तो कहीं दो बार नमक डाल देगी या तो फिर फीका कर देगी। श्री कृष्ण कहते हैं तुम्हारे जीवन में समता रूपी योग लाओ, फिर तुम धंधा करते हुए भी योगी, ऑफिस चलाते हुए भी योगी, घर का काम करते हुए भी योगी, और युद्ध करते हुए भी तुम योगी हो जाओगे। जो योगी को मुक्ति का फल मिलता है, परमात्मा का लोक की प्राप्ति होती है, वही तुम्हारे को संसार के व्यवहार करते समय भी मिल सकती है। शर्त ऐसी है कि कभी कभार ऐसे योगियों का सत्संग करो, ऐसे लोग योगियों के संपर्क में जाओ। तीन अफीम जीते वो आपस में झगड़ रहे थे, एक ने बोला बेवकूफ कहीं का, मैं ही प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, दूसरे ने कहा ये मुंह और मसूर की दाल, तू प्राइम मिनिस्टर बनेगा, कभी नहीं हो सकता, अब की बार मेरा ही वारा है, मैं ही प्राइम मिनिस्टर बनूंगा। दो भिड़े, तीसरे अफीमचे ने कहा कैसे नादान नालायक, अफीमची तो अफीमची, अरे पागल हो, जब तक मैं रिजाइन नहीं करता तब तक तुम प्राइम मिनिस्टर कैसे बन सकते हो। जयराम जी बोलना पड़ेगा, बात तो सच्ची, वो रिजाइन करेगा तब तो ये बनेंगे। फिर वो चलते चलते दो चार दिन बीते, एक अफीम चीने का यार देख सुलेमान, मेरा घर चौराहे पे है और टेबल इटारी का है, मैं कभी कभी दूसरे फ्लोर पर, कभी कभी तीसरे पहले फर्स्ट फ्लोर पर बैठता हूँ और अटारी में तालिका में बैठे बैठे देखता हूँ, सुबह होते ही इंसान चारों तरफ भाग दौड़ करते, चौराहे पे मकान है, देखता हूँ तो चारों तरफ बाइसकलें, चारों तरफ स्कूटर, चारों तरफ कारें, चारों तरफ वो जो खटारे बटारे बोलते ना वो भी चारों तरफ भागते, एक तरफ क्यों नहीं जाते बंदे। दूसरे अफीमची ने कहा तू सचमुच में पागल है, अफीमची तो अफीमची आखिर, अगर वो चारों तरफ नहीं जाए तो एक तरफ वजन बढ़ जाएगा और धरती उलट भी सकती है, इसलिए समझदार चारों तरफ जाते हैं। तो अफीमची की बात पर जैसे आपको हमको हंसी आती है, ऐसे ही उस समत्व योग के बिना आपके हमारे व्यवहार पर और आपके हमारे थिंकिंग पर भगवान को और भगवान को पाए हुए महापुरुषों को भी हंसी आती। जय राम जी की। मैं ये कर लूंगा, मेरे को इतना करना है, मैं ये कर लूंगा, मेरे को इसने दुख दिया इसका सत्यानाश कर लूंगा तब ठीक होगा, बेटा होगा तब मैं सुखी हो जाऊंगा, प्रमोशन होगा तब सुखी हो जाऊंगा, शादी कर लूंगा तभी सुखी हो जाऊंगा, बेटा होगा तब सुखी हो जाऊंगा, सब हो जाए फिर भी देखो तो कुछ न कुछ दुख और जिम्मेदारी और मुसीबत ही मुसीबत है, ये हो जाए वो हो जाए तब सुखी हो जाऊंगा, ये भ्रांति है। समत्व योग हो जाए तो आप तो सुखी हो जाएंगे, आपकी मीठी निगाहें जिन पर पड़ेगी वे भी पुण्यात्मा होने लगेंगे, वो भी धर्मात्मा होने लगेंगे। गुजरात में भरूच है, बड़ौदा से सूरत जाते समय बीच में आता है भरूच स्टेशन, वहां वटवृक्ष के नीचे एक मुल्ला जी का झोंपड़ा था, जो बारिश आए तो चटाइयां में से पानी चूता, वो मुल्ला जी बनाने जाते एक जगह दो जगह ठीक करके आते तो आते आते कहीं उनका पैर कहीं हाथ के कारण खड्डा हो जाता और झोपड़ा चूता। बारिश में दो पांच दस बार कभी पंद्रह पंद्रह बार मौलवी तंग हो जाती और मुल्ला को चढ़ाती, एक जगह रिपेयर करके आते तो दूसरी जगह चूता। मौलवी के मन में हुआ कि ये बंदा एक झोपड़ा ठीक नहीं कर सकता तो लोगों को कैसे ठीक करता होगा, क्योंकि मुल्ला के पास मोर पीछों का झाड़ू था, जादू की एक लकड़ी थी, झंडी झोला था, वो भूत प्रेत निकालने का धंधा करता था। कोई आदमी भागता हुआ आया कि मेरे भाई को भूत लगाए, खाट पर बांध दिया उसको, चलो। मुल्ला जी ने उठाया झोला झंडा सारी जादू की लकड़ी वकड़ी उठाई है और खटिया को चक्कर मारा, मोलुण पीछे पीछे गए कि देखें ठीक कैसे करता है। जिस लड़के को था गड़बड़ उसके कान में मारी फूंक, आकाश बांधूं पाताल बांधूं, आकाश को बांध दूंगा पाताल को बांध दूंगा, तब तक तो मोलुण ने सुना, आकाश बांधूं पाताल बांधूं जल बांधूं, जब बोला तो मोलुण चौंकी, जरा सा झोंपड़े का जल नहीं बांध सकता है और पूरा जल बांधू बोलता है, आकाश बांधूं पाताल बांधूं जल बांधूं थल बांधूं तेज बांधूं पृथ्वी बांधूं, एक फूंक मारी फिर दूसरा चक्कर काट के ये बोलने गया, मोलवन अपने को संभाल कर रखा, फिर तीसरा चक्कर मोलवन उछल कूद मचा रहा था उसका मन, अपने को संभाला लेकिन मुल्ला को तो सात बार ऐसा कहना था, जब और चक्कर मार के मुल्ला कहने लगा आकाश बांधूं पाताल बांधूं और जल बांधूं बोला तो मोलवन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। वो घर वालों का वो होता न कपड़े कूटने का डंडा नहीं होता, डूंगरी आखरी जो भी आप बोलते हैं गुजराती में धोको बोलते हैं, जे धोको पड़े हो तो कपड़ा धोवानो धोको, कपड़ा धोने का लकड़ी होती है ना आपरी जो भी आप लोग बोलते, वो मोलवण ने उठाई और दे मारी पीठ पर दो, आका एक जरा सा झोपड़ा नहीं बांध सकता और आकाश बांधूं पाताल बांधूं जल बांधूं करते हो, ऐसे ही हम लोग बोलते ये कर दूं वो कर दूं, लेकिन जो अपने निकटवर्ती है दिल, उस दिल को दिलभर के ज्ञान से बांध लो तो कल्याण हो जाए मंगल हो जाए, जो आप कर सकते वो कर लो तब तो उसको जो करना है वो देर नहीं करता है, आपको जो जानना चाहिए वो जान लो तो उसको जो जानकर देना चाहिए वो देने में देर नहीं करता।